So, this chapter of Lilamrita, Srila Prabhupada Lilamrita, where the paragraph we're going to begin is talking about the attacks by the anti-cult movement in the United States.
तो ये जो अध्याय है हरे कृष्ण गाय और संघर्ष करें इसमें से हम लोग पाठ करेंगे कि कैसे जो है वो
So we'll read some and then I have some commentary because I was in the epicenter of the fight against the anti-cult movement.
तो हम इसमें से पढ़ेंगे और उसमें से मैं कुछ टिप्पणी दूंगा क्योंकि मैं उस समय पर था जब ये अभी भाविकों की तरफ से इस कौन के ऊपर आरोप
So this chapter
डाले जा रहे थे.
This chapter is called Chant Hare Krishna and Fight.
और इस अध्याय का शीर्षक है हरे कृष्ण गाए और संघर्ष करें.
So I'm not sure what year was. Oh, February 7th, and this is 1977. February 1977.
So ये February 1977 की बात.
Srila Prabhupada's stay at ISKCON Mayapur had been quiet, but as the GBC men began arriving from the west, he heard the latest news of the fierce opposition to Krishna consciousness in America.
ISKCON Mayapur mein Srila Prabhupada ka padhav shantipurn tha, kintu paschim se GBC ke logo ke pahunchne ke saath unhe America mein Krishna bhavna amrit ke ghor virodh ke navnitam samachar milne lage.
Dhamma Krishna Goswami and Brahmananda Swami coming from New York reported that the case in which Adi Keshava Swami, he was GBC at that time, was being charged with mind control and the case would be heard later in March and that the judge had given Adi Keshava permission to come and see Srila Prabhupada.
New York se aaye Tamal Krishna Goswami aur Brahmananda Swami ne bataya कि उस मामले की सुनवाई मार्च के आखिरी दिनों में होने वाली थी जिसमें आदि केशव स्वामी पर मस्तिष्क नियंत्रण माइंड कंट्रोल का भी अभियोग लगाया गया था और न्यायाधीश ने आदि केशव स्वामी को अनुमति दे दी थी कि वे भारत आकर श्रील प्रभुपाद से मिल सकते हैं.
They also told Prabhupada that several other devotees had been kidnapped and that in some cases parents had secured legal conservatorship through judges to abduct the devotees.
उन्होंने प्रभुपाद को ये भी बताया कि कई अन्य भक्तों का अपहरण हो चुका था और कुछ मामलों में अभिभावकों ने भक्तों के अपहरण और संरक्षण का कानूनी अधिकार न्यायाधीशों से प्राप्त कर लिया था.
Conservatorship means a legal court order by which they could kidnap. See, normally kidnapping anywhere in the world is illegal. But they would find, in America we say redneck judges, that means they would find right-wing, highly conservative judges who would give the order that it was legal for them to kidnap devotees. It's illegal, but they would, a crooked, or you could say demoniac judge, would write the legal papers so that he could do it without breaking the law.
तो उस समय कुछ ऐसा हो गया था कि भक्तों का अपहरण किया जा रहा था. वैसे तो अपहरण करना कानून के खिलाफ है लेकिन कुछ ऐसे न्यायाधीश थे जो कि कृष्ण भावना अमृत के विरोध में थे तो उन्होंने जो है ऐसे संयंत्र रचा कि उन्होंने इस अपहरण का जो है वो उसको एक न्याय के अनुसार जो है उनकी अनुमति दे दी थी तो भक्तों का इस कारण लीगली अपहरण हो रहा था.
So this was called the deprogramming movement. Actually, Yadubar in the film that I think all of you have seen, Prabhupada's biography film, briefly touches on the theme of this era that is described here.
तो ये हम यदुबार प्रभु की जो फिल्म है हरे कृष्णा जो प्रभुपाद जी के ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी हमें डीप प्रोग्रामिंग के बारे में देखते हैं कैसे भक्तों का अपहरण करके उनको
In the film there was one interview with an upset mother of an adult daughter who had joined ISKCON and the mother was claiming her daughter had been brainwashed and abducted and all these things.
तो इस मूवी में हम देखते हैं कि एक बीच में ऐसा उसमें आता है भाग जिसमें एक औरत एक महिला जिसकी बेटी जो है उसने कृष्ण भावना अमृत को में जुड़ चुकी है तो उसकी कैसी भावना है उसमें उस फिल्म में उसके बारे में बताया गया है.
In another clip they showed my godbrother Amarendra Prabhu, who is a licensed attorney, he was dressed in a suit and tie for the film, probably had tilak on, but he was explaining about this anti-cult movement and how they were attacking him.
तो इस फिल्म में मेरे गुरु भाई जो कि एक वकील थे उनका भी इंटरव्यू है जिसमें वो बता रहे हैं कि उस समय कैसे जो है ये घटनाएं घट रही थी.
And in the film also Yadavar included a clip of an interview with Ted Patrick, the infamous black demon who nowadays they say African American, who used to charge your parents $10,000 to kidnap their adult children from ISKCON and other so-called cults.
तो इस मूवी में टेड पैट्रिक करके एक और व्यक्ति का जो है इंटरव्यू भी है जो कि महाराज कह रहे हैं कि काला असुर के समान था जिसको जो $10,000 लेता था भक्तों के पिता माता से उनके परिवार से कि भक्तों का अपहरण करके उनका मस्तिष्क नियंत्रण में बदलाव लाने के लिए.
So this is what Bhagavad calls foaming at the mouth. Foaming at the mouth.
तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे मुंह से कोई झाग निकालना है उसके समान.
Like an overworked horse or a donkey, it will make foam in the mouth.
जैसे कोई गधा या कोई आदमी जब बहुत मेहनत कर लेता है तो उसके मुंह से झाग निकलती है, लाल टपकती.
When the demons get upset with the devotees, they foam at the mouth, they begin blaspheming.
तो जब असुर जो है भक्तों से परेशान हो जाते हैं तो फिर वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं.
We know from the Bhagavatam that goes back to the very beginning of the creation.
और हम भागवतों में पढ़ते हैं कि ये सृष्टि की शुरुआत से ऐसा.
When Hiranyaksha,
जब हिरण्याक्ष था,
he was also foaming at the mouth.
उसके मुंह से भी ऐसी झाग निकल रही थी. वराह भगवान को देखकर.
Blaspheming the devotees, blaspheming Lord Vishnu, interfering with Jagna and Puja performed by Brahmins, all these demonic activities that now, you know, so many hundreds of thousands or even millions of years later, these things are still going on.
जिस तरीके से हिरण्याक्ष कर रहा था, भगवान विष्णु की निंदा कर रहा था, वैष्णवों की कर रहा था, ब्राह्मणों की कर रहा था, यज्ञ की कर रहा था, पूजा की कर रहा था, उस तरीके से लाखों करोड़ साल भी आज हम ऐसी ही मानसिकता आजकल के आसुरिक लोगों में देखते हैं.
These are all now modern demons, or what we call in America, we say puber time. Puber time is slang language, which means chota. They're very small demons, but they foam at the mouth, they make a lot of noise. They think they're as big and as powerful as Hiranyakashipu and Hiranyakshak, but it's just fantasy. They have no such powers.
So, आज के समाज में ऐसे आधुनिक असुरों को देखते हैं जो कि वैसे ही दहाड़ते हैं. वैष्णव की भगवान की निंदा करते हैं, दिखाते बहुत शक्तिशाली है लेकिन बहुत छोटे असुर हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते.
But just as Hiranyakashipu arrested his own son Prahlad Maharaj, so we see that this was a long time ago, so many hundreds of thousands of years ago, or even millions of years ago. But we see that in modern times how parents were hiring gundas, or we say in America thugs, that means hired, what's the word? I'm trying to think of the English word. I've gotten used to saying gunda in India. But hired bad guys, hired ruffians to kidnap their adult children and drag them away, take them away from devotees.
तो इसलिए जो है जैसे जो आजकल के उस टाइम समय अमेरिका में ऐसे माँ बाप क्या कर रहे थे कि ऐसे गुंडों को पैसे देकर अपने बच्चों को जो कि ISKCON में थे उनका अपहरण करा रहे थे.
They paid this man, his name Ted Patrick, they paid him 10,000 rupees, 10,000 US dollars per head to kidnap their adult children. Very costly. But the parents would pay it in the hope that their adult children would come back home. Does this sound familiar? They don't do this in India, but some parents feel that way, certainly. It's an old pastime.
So Ted Patrick, jo hai, wo har ek bacche ke liye, uska aparan karne ke liye, $10,000 unke maa-baap se leta tha, jaise Hiranyakashipu ne apne bacche Prahlad ko kaid kar liya tha.
How do we know it's an old pastime?
And hum kaise jante hain ye purana itihas mein bhi aisa hua hai?
I wonder if anybody knows the answer.
To agar kisi ko iska uttar pata hai ki itihas mein bhi aisa hua hai ki कि अपने ही माता पिता ने अपने बच्चों को कैद कर लिया, भक्ति नहीं करने दी, तो ऐसा ऐसा उदाहरण आप इतिहास में बताइए।
रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास, when he was a young boy, he was almost, I don't know how old he was exactly, but he was originally perhaps a teenager and then he was a young man. And he belonged to a very aristocratic family. Yes? Maybe my really person. Well, Narottam Das Thakur was a different situation. He ran away from home, no doubt about it. Narottam Das Thakur was a prince. He was supposed to become king. His father was the king. So Narottam Das Thakur, he was supposed to become the king.
तो ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि इतिहास में रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, जो कि एक बहुत ही वीर माँ बाप के बेटे थे, जो भी जो जिन्होंने अपने घर से वो भागे थे श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए, ऐसे उदाहरण दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर का भी देखते हैं।
He was not restrained like like Raghunath Das was restrained, physically restrained. Raghunath Das was physically restrained by his parents.
तो महाराज कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को तो ऐसा रोका गया था, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के साथ ऐसा नहीं था।
So, his parents thought, okay, this boy is trying to run away from home all the time. Let's get him entangled.
तो उनके माँ बाप सोच रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी के कि ये घर से भागना चाह रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से इसको फंसाया जाए।
If we don't get him entangled, we'll become a Hare Krishna, oh my God.
और अगर हम इसको नहीं फंसाएंगे तो हरे कृष्ण का भक्त बन जाएगा।
Nothing personal, but the best way to get a brahmachari entangled is get a marriage, of course.
तो सबसे अच्छा तरीका है ब्रह्मचारी को फंसाने का, वो उसकी शादी कराना।
Raghunath Das had no intention of getting married. He didn't want to get married.
तो रघुनाथ दास स्वामी शादी नहीं करना चाहते थे।
But you know, his parents insisted. This is a very old pastime.
और हमने सुना है कि उनके माँ बाप जिद कर रहे थे और ये बहुत पुरानी घटना है।
So they got married to a very wealthy, very beautiful aristocratic young woman, you know.
तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी की शादी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से कराने की कोशिश की थी।
चैतन्य चरितमृत describes.
चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन है।
They want to make sure that he was thoroughly entangled, so they chose a very beautiful woman.
तो वो चाहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो इन विवाहित जीवन में फंस जाए, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर लड़की को चुना था।
Fire butter, Srila Prabhupada said.
प्रभुपाद जी इसकी तुलना आग और मक्खन से करते
हैं। Fire butter melts, you know. So they
तो अग्नि के संपर्क में मक्खन जो है वो पिघल जाता है।
If we marry him off to a beautiful young woman, then he'll lose his attraction for Chaitanya Mahaprabhu.
तो अगर हम सुंदर लड़की से विवाह करेंगे तो हमारा आकर्षण महाप्रभु के प्रति कम हो जाएगा।
Because they knew he was trying to run away from home and become a Hare Krishna with Chaitanya Mahaprabhu. They knew that.
तो जानते थे कि वो भागना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु से जुड़ने के लिए, हरे कृष्ण के भक्त बनने के लिए।
Yeah, no interest in married life.
लेकिन उनकी रुचि गृहस्थ आश्रम में नहीं थी, विवाहित जीवन में नहीं थी।
But at one point, due to cleverness, he managed to get an audience with Chaitanya Mahaprabhu.
तो एक बारे बहुत चतुराई से उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए थे।
Mahaprabhu told him, "This is not the right time for you to join."
चैतन्य महाप्रभु ने कहा, "ये अभी सही समय नहीं है."
What you should do for now is play the role of the ideal householder.
तो अभी आपको क्या करना चाहिए, एक आदर्श घर के तरीके से रहना चाहिए।
Stop trying to run away from home.
और कुछ दिनों के बाद फिर आपको घर को छोड़ना
चाहिए। Carry on your business and family duties, just everything first class.
तो बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को संभालिए, अपने काम को संभालिए।
So, on the order of Chaitanya Mahaprabhu, that's what Raghunath Das did.
और उनके आदेश अनुसार ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा ही किया।
You could say that he faked it.
पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है वो एक
of course his parents were delighted. Now finally this boy got rid of all these crazy ideas of becoming Hare Krishna. He got rid of all these. Finally, our son got rid of these crazy ideas of becoming a Hare Krishna.
सर ओके ओके तो फिर उनको रघुनाथ दास स्वामी के माता पिता को लगा कि जो है अब रघुनाथ दास स्वामी इतने अच्छे तरीके से सब चीजें देख रहे थे तो उनको लगा हाँ इसके मन से जो है हरे कृष्ण का भूत उतर गया.
Does it sound familiar?
तो क्या आपको ये ऐसी कुछ सुनी सुनाई बातें लगती
हैं? Reincarnated, the same phenomena has reincarnated 530 years later.
और करीबन 530 साल बाद वही चीज दोबारा हुई.
Especially in India, in the U.S.
खासकर हिंदुस्तान में.
U.K. the family is not so tightly knit, but
U.S. और U.K. अमेरिका में और इंग्लैंड में जो है जो परिवार है उनमें इतनी घनिष्ठता नहीं होती.
So at some point, Raghunath Das was fed up with family life.
और कुछ दिनों के बाद रघुनाथ दास को स्वामी घर रहते रहते उग गए.
So he tried to run away again.
और वो वहाँ से भागना चाहते थे.
Each time he would run away, his parents would send guards looking for him.
और जब भी वो भागते तो उनके माता पिता जो है वो अपने नौकर चाकर गार्ड को भेज देते उनको पकड़ने के लिए.
Search party.
उनको ढूंढने के लिए.
And then they would capture him and drag him back home.
कि उनको पकड़ के वापस घर ले.
They would drag him back home.
कि वो उनको वापस घर लेके आ जाए.
So finally, this was after he was married, man. He still was trying to go to Mahaprabhu. He was obsessed with going to Mahaprabhu.
तो ये तब हुआ था जब उनकी शादी हो गई थी.
So finally, his mother said. Told her husband, tie him up with ropes.
तो आखिरी में उनकी माता ने उनके पिता को कहा कि इनको रस्सी से बांध लीजिए.
She wanted him to physically tie up their son so they couldn't go anywhere.
तो वो चाहती थी कि इनको जो है वो शारीरिक रूप से बांध दिया जाए ताकि वो भाग ना सके.
His father on the hand was more intelligent.
लेकिन उनके पिता ज्यादा बुद्धिमान थे.
He said, we've already bound him up with the ropes of a very, very beautiful woman.
हमने रघुनाथ को वैसे ही बांध लिया है एक बहुत सुंदर लड़की से उसका विवाह कराकर.
He was extremely wealthy.
और वो बहुत धनी भी थे.
I mean, his family is extremely wealthy.
और उनका परिवार बहुत धनाढ्य था.
A big, big family in Bengal. Big, big, big.
बंगाल में उनका बहुत ऊंचा नाम था.
So. Raghunath Das had to wait and remember that the time would come when he'd be able to go to Mahaprabhu.
तो रघुनाथ दास गोस्वामी को इंतजार करना पड़ा और सही समय का इंतजार करना पड़ा कि कब वो चैतन्य महाप्रभु के मिल पाएंगे.
530 or 550 years ago.
तो ऐसा करीबन 530 साढ़े 500 साल पहले था.
So in modern times, the parents paid out in America. They paid out $10,000 and they hired these ruffians.
We call them. और आधुनिक आजकल के समय उस समय प्रभुपाद जी के समय अमेरिका में माँबाप जो हैं वो अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति से दूर करने के लिए इस ऐसे गुंडों को पैसे दे रही थी और करीबन $10,000 हर बच्चे के लिए.
They would kidnap their adult children. They were adults, you know. The adult in America or most places in the world means over 18 years old. They had no right to do that legally. They did it anyways.
तो हालांकि उनका legally कानूनी रूप से तो उनका कोई उनको अनुमति नहीं थी उनका अपहरण करना लेकिन वो फिर भी कर रहे थे.
Then sometimes they would take them way across the country to some remote area in like the deep south of the United States. Where the anti-cult movement could just pay off the local sheriff who was sympathetic to the parents and thought they were doing the right thing, and so they would actually put them sometimes in concentration camps. Barbed wire fences sometimes.
तो फिर वो क्या करते हैं कि जो है वो जब ऐसे उनको अपहरण कर लेते भक्तों का तो उनको दूर की अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण और उनको किसी एक ऐसे गुप्त स्थान में जहाँ पर और इसका हरे कृष्ण आंदोलन का कोई भी प्रभाव ना हो तो वहाँ पर उनको बंदी बना लेते और कंसंट्रेशन कैंप जैसे स्थान पर उनको रख देते ताकि जो है वो उससे दूर हो सके.
Sometimes the devotees would be very clever.
लेकिन भक्त लोग बहुत चतुर होते.
after being held captive, sometimes in their own home with guards outside. In their own home with guards outside.
तो वो क्या करते हैं अपने घर के बाहर ही गार्ड को रख लेते ताकि जो है कोई ऐसा उनका अपहरण ना कर सके.
So the devotee would figure, I gotta fake that they got me.
तो वो क्या करते कि वो ऐसा नाटक करते कि शायद जो उन्होंने मुझे ऐसे बंदी बना लिया.
So how do you fake being in Maya?
और आप कैसे मतलब नाटक करोगे कि आप माया में हो?
After all, the devotees know how to be in Maya. We know the script, you know.
हमें पता है कि माया में होने का क्या मतलब है.
So they would say, "Mama, we're going to go see a movie."
तो बोलते मम्मी मुझे आज पिक्चर देखने जाना है.
Parents would be delighted. So off they go to the cinema house.
माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं. अरे वाह ये ठीक हो गया.
Oh, we got him now. It worked, you know. Now he's forgotten about Krishna. Ha ha. Yes.
तो बड़े क्या खुशी की बात है अभी कृष्ण को भूल चुका है वाह.
So and then they would keep they would let their guard down and then they wouldn't keep guards. They thought we got him now, we successfully deprogrammed him, he's not going to try to be he or she the girls also they won't try to be Hare Krishna anymore because Hare Krishna's don't go to the cinema. The parents knew that.
क्योंकि माता पिता को लगता है अब गार्ड रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरा भक्त जो है हरे कृष्ण नहीं रहा क्योंकि वो पिक्चर देखने जा रहा है हरे कृष्ण वाली पिक्चर नहीं देखते.
So they literally let the guard down.
और वो गार्ड को वहां से भेज देते.
So the clever devotee, when they see the guard was down, they would run away.
और जब वो चतुर भक्त देखते कि गार्ड चले गए हैं भागे तुरंत वो जो है मंदिर चले जाते.
So, of course, some of them more successfully broken from Krishna consciousness.
लेकिन ऐसा भी हुआ था कि कई भक्त लोग इस एपिसोड में इस घटना में कई भक्त लोग जो हैं वो भक्ति से दूर भी हो गए थे उनका चुप भी हो गए.
Perhaps the majority kept their faith in Prabhupada and chanting the holy name.
अधिकांशता जो हैं फिर भी जप कर रहे थे और उनका विश्वास प्रभुपाद पे तब भी था.
So. This was a very important part of history in the United States. That's why Yadavar put it in the film, just hinting at it. But I was working at the BBT legal office at the time, and I was in the epicenter of fighting against the anti-cult movement.
Yadavar Pune to isko bahut chote roop se dikhaya picture mein, lekin main jo hai usi samay ISKCON ki legal office mein seva karta tha.
Sometimes
is ghatna ke bilkul beecho beech tha jab ye ho raha tha.
Sometimes the anti-cult movement would hold a sangha. I mean, not a real sangha, a sangha of demons. I don't know what you call a sangha of demons. A gathering, a convention.
तो ऐसे लोग क्या करते हैं कभी-कभी संघ में सब लोग इकट्ठे हो जाते.
And they would bring forward successfully deprogrammed former members of a so-called cult, because we weren't the only ones they attacked. They attacked other religions also that were unpopular, but we were the chief target.
तो फिर ये लोग क्या करते हैं ऐसे संघ में उन सब लोगों को लेके आते जिन्होंने अपने अपने जिस जिस जगह पर उन्होंने जो है जिनसे वो जुड़े हुए थे जिनसे वो छूट गए थे तो ऐसे सक्सेसफुल केसेस को उस संघ में लाकर जो है सबको दिखाते.
Now the next part is really important.
और अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण है.
Well, anyways, when I worked at the legal office, so sometimes I would infiltrate their convention. I would do it. I would dress up in suit tie, and I wasn't clean shaven at that time, and I would infiltrate, dressed in a suit tie, I'd infiltrate their convention, spy. That was my service for the legal department.
तो महाराज कह रहे हैं कि मैं उस समय क्या करता क्योंकि मैं लीगल ऑफिस में सेवा कर रहा था तो कभी कभी ऐसे संघ में मैं छुप के चले जाता था. उस टाइम मैंने बाल नहीं मुंडवाए थे तो मैं शर्ट पैंट में सूट टाई में ऐसे उनके संघ में चले जाता.
So in order to enthuse themselves, sometimes they would have some successfully deprogrammed former cult member there who would give their testimony about their alleged abuse and this and that. And so they would get the parents would get jacked up, and they think yes, we're doing the right thing, very good, you know.
तो फिर ऐसे संघ में वो क्या करते हैं कि जो जिन जो सक्सेसफुल डीप्रोग्राम हो गए थे जो कि जिन्होंने उन्होंने उनका अपहरण करके उनको इस्कॉन से दूर कर दिया था, तो ऐसे लोग जो है वो अपना टेस्टिमोनी देते, वो अपने बारे में बताते और फिर वो ये बताते कैसे हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है, कैसे हमारे साथ उम्र में फंसाया गया था। और जब सब पूरे संगत संगति चीज सुनती तो उनको लगता हाँ जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं।
Now, the really important part that you have to download, request that you download it, please.
तो एक महत्वपूर्ण चीज जिसको आपको आपको सीखना चाहिए तो आप इसको ध्यान पूर्वक।
Sometimes the deprogrammer had studied Hindu philosophy a little bit.
तो कभी कभी क्या होता है जो deprogrammer थे उन्होंने हिंदू फिलोसफी पढ़ी थी सुनी थी।
So they could dialogue with the Hare Krishna devotee and try to break their faith.
और क्योंकि उन्होंने हिंदू फिलॉसफी पढ़ी थी तो वो क्या करते कि ऐसे जो भक्तों से जिनको उन्होंने अपहरण किया था उनका वो श्रद्धा को काटते, उनसे वो विवाद करते, उनकी श्रद्धा को काटते। तो जो नए भक्त है जिनको सिद्धांत इतने अच्छे तरीके से नहीं पता था तो खासकर उनके ऊपर आक्रमण करते कि उनकी श्रद्धा को काटते। लेकिन जो भक्त लोग पुराने जुड़े हुए थे वो तो पक्के थे, लेकिन जो नए नए जुड़े थे जो भी कच्चे थे सिद्धांत में उनको वो उनकी श्रद्धा को वो काटने की कोशिश करते थे।
So the program having studied a little bit of Hindu philosophy, not really, but I mean to say they just dabbled in it enough in order to be able to confuse an innocent devotee who didn't know the philosophy.
तो क्या करते हैं कि ऐसे नए भक्त जो थे जो बिल्कुल अभी अभी जुड़े थे जो वो क्या करते हैं कि वो कुछ उनके सामने कुछ ये हमारे धर्म का कुछ सिद्धांत रखते ताकि जो है वो सब जो सिद्धांत सुनते तो उनको ऐसा लगता कि इनको पता है उसके बारे में ताकि उनको वो भ्रमित कर सके।
प्रोग्रामर वुड से टू द डिवोटी सपोजिंग यू आर नॉट सच अ सीनियर डिवोटी सो द प्रोग्रामर वुड से knowing that they were new and didn't know any philosophy, they took advantage of that. You see, that's why learning the philosophy is really important.
So, इसलिए वो क्या करते समझ लीजिए अगर पीयूष जो है वो नए भक्त अभी जुड़े हैं जिनको इतनी अच्छी तरीके से फिलॉसफी सिद्धांत नहीं पता और महाराज दीप प्रोग्रामर हैं तो फिर वो कैसे बोलता अभी महाराज बताएंगे। इसलिए फिलॉसफी को पढ़ना सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी।
They were very tricky, the deep programmer, with a very small knowledge of Hindu philosophy. I mean, they didn't really study it. They just tried to study enough to make it, to fake that they knew something about Hindu philosophy. They didn't really know anything, but they would fake it in order to confuse the devotee.
तो वो क्या करते हैं? वैसे बहुत शातिर थे, तो हालांकि उनको ज़्यादा नहीं पता था, थोड़ा सा ही पता था, लेकिन वो इतने चतुर थे कि उस छोटे से ज्ञान से वो किसी को जो है वो भ्रमित करना जानते थे।
So they would ask the devotee,
तो वो भक्त से पूछते,
Do you know that Krishna is not mentioned in the Vedas?
तो वो बोलते, तुम जानते हो कि कृष्ण का नाम वैदिक शास्त्र वेदों चार वेदों में नहीं है।
Devotee doesn't know the philosophy, doesn't know what to say.
तो जिस भक्त को अच्छी तरीके से सिद्धांत नहीं पता था तो उसके पास उसका इस प्रश्न का उत्तर नहीं था।
Would you know how to answer that question?
तो आपको पता है इसका उत्तर क्या है?
Yes, no?
Yes या no, हाँ या नहीं?
You know how to answer that question? What would you say?
तो आप क्या कहते?
Bhagavad Gita is there, Krishna is still Bhagavan Swayam, yes. But you see, they are, this is typical materialistic conception, separating Bhagavad Gita from the Vedas without any acknowledgement that Srila Vyasadeva is the author of both. They don't know that because they never really studied.
जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो क्या करते हैं? व्यासदेव ने वेद लिखे, व्यासदेव ने भागवत लिखी है, लेकिन वो जो है इसको लोगों को भक्त को पता नहीं होता है, तो इसलिए फिर वो बता नहीं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते।
They're not giving any credit to Bhagavad Gita because they don't even know what it is hardly. But they would be seeing that Bhagavad Gita due to ignorance, they would see the Bhagavad Gita as being separate from the Vedas. They're talking about the hardcore Vedas,
तो वो भगवद गीता या श्रीमद भागवतम को वेदों से अलग करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ चार वेद की ही बात करते हैं भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए.
Would you have any clue how to answer that question? Krishna is not mentioned in the Vedas. Do you know that?
Krishna ka naam char vedon mein nahi hai. Iska uttar aap de sakte hain.
What did he say? Yes, when you're talking Gita again, they don't accept authority of Gita. Brahmins, they don't accept authority of Bhagavad Gita. But that's nice. It's nice. That's great. That's wonderful. But they don't accept the authority of Bhagavad Gita. They are cutting it out of the Vedas, which you can't do. It's the same author. But they're too foolish. They don't know Tamagun. They don't know that the Bhagavad Gita is part of the Vedas. They don't know that. But we're supposed to know. That's good. But I'm driving at something more.
What to translate, Maharaj? What should I translate?
Here's the shocking truth. The shocking truth is, except for Bhagavad Gita, if you take the limited smarta conception, smarta Brahman conception of Vedas, they're right! Krishna's not mentioned in the Vedas, hardcore Vedas. Bhagavatam, they don't know. It's not included. They don't include Bhagavatam. They don't know Bhagavatam exists. How can they include it as part of the Vedas? They don't know all these things. We have to know these things.
तो चुकाने वाली सत्य ये है कि कृष्ण का नाम वास्तव रूप में वेदों में नहीं, लेकिन जो खासकर जो स्मार्ट ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, तो वो सिर्फ चार वेदों को ही मानते हैं और वो कहते हैं इन चार वेदों में खासकर कृष्ण का नाम नहीं है. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम या महाभारत रामायण ये पंचम वेद है, ये वेद शास्त्रों का भाग है, उनमें कृष्ण का नाम.
So the programmer is partially correct because Krishna is not mentioned in hardcore Vedas.
तो ये जो डी प्रोग्रामर है ये कुछ एक तरीके से सही है कि वास्तव रूप में जो चार मूल वेद है उनमें कृष्ण का नाम नहीं.
How do we know?
हम इसे कैसे जानते हैं?
Without being a Vedic scholar, how do we know that Krishna is not mentioned in the hardcore Vedas?
और हम बिना कोई दार्शनिक हो ये कैसे जान सकते हैं कि जो चार वेदों में कृष्ण का नाम नहीं है?
Here we do accept, we take, they don't accept, but we accept the authority of Bhagavad Gita to answer that question. We accept the authority of Bhagavad Gita to answer that question.
तो उस प्रश्न के उत्तर के लिए हम ये कहते हैं कि हम गीता को प्रमाण के रूप में मानते हैं.
Because Krishna instructs Arjuna, the Vedas deal primarily with the three modes of material nature. Rise above them, O Arjuna. So he's the author of Vedas. He is telling Arjuna to reject.
तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो वेद हैं वो तीन गुणों के अंतर्गत हैं. तो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इन तीनों वेदों के ज्ञान से ऊपर उठो. तो वही कृष्ण जिन्होंने वैदिक शास्त्र दिया है वही कह रहे हैं कि तुम इसको ठुकरा के इनसे ऊपर उठो.
Don't know about the existence of Srimad Bhagavatam. They don't know that the Srimad Bhagavatam is referred to as the cream of the Vedas.
तो उनको ये नहीं पता कि श्रीमद् भागवतम जो है वो वैदिक शास्त्र का जो है वो मूल ज्ञान है.
If you have a jug of raw milk, the cream rises to the top.
तो जैसे अगर आप एक दूध का पतीला लें तो उसके में जो उसके जो चिकनाई है या क्रीम है उसे ऊपर आ जाती
है. So Bhagavad Purana is the cream of all of it, but they don't know that.
So Bhagavad Shivan Bhagavatam Bhagavad Puran जो है वो वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, लेकिन वही चीज नहीं जानते.
Vedanta Sutra is very heavy scripture.
तो वेदांत सूत्र बहुत ही एक गूढ़ शास्त्र.
No one here will be able to stay awake during recitation of Vedanta Sutra. Neither with our puppy brain could we understand Vedanta Sutra.
तो कोई भी यहाँ पर जो है वेदांत सूत्र के सभी सूत्रों का सार उच्चारण ना कर पाए क्योंकि वो छोटे से मस्तिष्क ऐसे गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ सकते.
In the West it's called cerebral, the intellectual part of the front lobe of the brain. You know, cerebellum, the front part of the brain, called cerebellum. Cerebral means very intellectual, it's super intellectual. The Vedanta Sutra, very technical and so forth. For us, most of us, unless you're a pundit, it would be dry.
So, medical knowledge, medical ज्ञान में जो है जो मस्तिष्क का आगे वाला भाग है उसको cerebral बोलते हैं, हमारी इसमें हमारी बुद्धि निवास करती है. तो ये बहुत ही जो विद्वान लोग होते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही गूढ़ चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो उनके समझ के बाहर है.
So therefore, Srila Vyasadeva wrote a commentary on Vedanta Sutra for us, hopefully.
तो इसीलिए श्रीला व्यास देव ने वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखी श्रीमद् भागवतम हमारे लोगों के को समझाने के लिए.
So Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam is a commentary on Vedanta Sutra. We can't approach Vedanta Sutra, but we are supposed to, by the mercy of Srila Prabhupada, approach Srimad Bhagavatam. It is digested for us, especially for residents of Kali Yuga.
तो श्रीमद् भागवतम जो है वो वैदिक शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है वेदांत सूत्र के ऊपर व्यास देव के द्वारा ही टीका है और हमारे लिए सबसे ऊंचा प्रमाण.
Now in the Bhagavatam, another important clue is given to the deprogrammer's harsh question.
तो श्रीमद् भागवतम में भी इसका एक और उत्तर दिया गया है इन डीप्रोग्रामर के जो
Krishna's not mentioned in the Vedas. Don't you know Krishna's not mentioned in the Vedas? So then the confused neophyte was like, what? Oh, Krishna's not in the Vedas. Oh my God.
तो इसका दूसरा उत्तर श्रीमद् भागवतम में मिलता है कि अगर जब वो ऐसे भक्तों को जो है प्रश्न पूछते थे कि कृष्ण वेदों में नहीं है तो ऐसे भक्त बहुत ही भ्रमित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, डर जाते थे.
So from the Bhagavatam explains that the deprogrammer is partially correct. Krishna is not mentioned hardly at all in the Vedas. Some Puranas, some Upanishads, you know, but mostly indirect, and mostly Lord Vishnu also. Where if there's mention at all, mostly Lord Vishnu, not Krishna.
तो श्रीमद् भागवतम से भी हमें पता चलता है कि जो डीप्रोग्रामर थे वो एक तरीके से सही थे ये कहकर कि कृष्ण का नाम वेदों में नहीं है और जो है वो एक तरीके से उनकी बात सत्य है.
So to answer the challenge by the deprogrammer, you have to go to Srimad Bhagavatam, which is part of the Vedas, but they don't know that. In fact, when I was dressed in the suit and tie and I was at their convention, I confronted one of the big shots of the anti-cult movement in Los Angeles, because when I worked for the BBT legal office, so I confronted one of their big shots.
तो महाराज कह रहे हैं कि इसका उत्तर जो है श्रीमद् भागवतम है क्योंकि श्रीमद् भागवतम वैदिक वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है तो वो चार वेदों से अभिन्न है और भागवतम ये घोषणा करता है कि कृष्ण जो है वो सभी कारणों के कारण है. तो जब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जब उनके संग में गया था जब डी प्रोग्रामर्स का संगा हुआ था तो मैं गया था और मेरा आमना सामना उनके एक बहुत ही बड़े डी प्रोग्रामर से हुआ था.
It's called turning the tables. In other words, I switched around. I confronted him with a philosophical question that he couldn't answer.
और मेरा उसके साथ जो है वो एक सिद्धांतिक जो है विवाद हुआ था और जो है मैंने उसका पासा पलट लिया था.
I asked him, "Have you ever heard of Srila Vyasadeva?"
तो मैंने उसको पूछा, क्या तुमने श्रील व्यासदेव का नाम सुना है? उसने मुंह से में जीवा बाहर निकाल दिया और कहने लगा,
"Busted!"
तो चारों खाने चित हो गए.
Then I told him, "Srila Vyasadeva is the author of all of the Vedas."
तो फिर तब मैंने उसको बताया कि श्रील व्यासदेव चारों वेदों के रचयिता हैं.
Srila Vyasadeva is the author of Srimad Bhagavatam.
और वो ही व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम को लिखा.
भगवद गीता
लिखी है.
महाभारत
लिखा है.
Where Krishna is described many times over.
जिसमें कृष्ण जिसमें बार बार लिखा है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान
he didn't know that.
और उसको नहीं पता था.
Unfortunately, the uneducated neophyte devotee, they also didn't know it, so they had no answer for the man.
और दुर्भाग्यवश जो नए नए भक्त थे जो अभी भी जुड़े थे उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं था नहीं पता था इसलिए वो फंस गए.
So in some cases the demoniac programmer would succeed in confusing the neophyte devotee enough so they would actually give up Krishna consciousness because they couldn't answer this philosophical questions where you have to
answer. और इसलिए ऐसे डीप प्रोग्रामर कामयाब हो गए थे कि ऐसे जो नव दीक्षित भक्त थे जो अभी भी जुड़े थे जिनको सही सिद्धांत नहीं पता था
हरे कृष्ण से दूर ले जाने के लिए. The final point now, the proof of what I'm saying. Yes, yes, Prasadam's coming up, don't worry.
और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता
When Srila Vyasadeva had completed compiling all of the Vedas that the programmer was talking about.
और आखिरी चीज जो कि इस बात को बिल्कुल सही तरीके से स्थापित कर देती है कि जब व्यासदेव ने चारों वेदों की रचना कर ली थी
His guru, Narada Muni, came along. Narada Muni is the guru of Srila Vyasadeva.
और तब नारद मुनि जो कि व्यासदेव के गुरु हैं वो उनसे मिलने के लिए आए थे.
You know, sarcastically, Narada asked, my dear Vyasadeva, it seems you're a little despondent. You just completed all this compilation of the Vedas. But you seem to be a little despondent. What is the problem?
और एक व्यंग खींचने के रूप में नारद जी ने कहा, व्यासदेव, तुमने तो चारों वेदों की रचना कर दी है, लेकिन तुम मुझे अभी भी निराश लग रहे हो, दिखाई दे रहे हो.
So then, Shri Vyasadev said, "Well, he's you know Maha Acharya, he's Mahajan, you know, no small devotee, obviously." A mega scholar, obviously, super pundit, obviously.
तो व्यास देव जो हैं वो ने उत्तर दिया जो कि वास्तव रूप में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बहुत बड़े विद्वान हैं भगवान के अवतार हैं और जिन्होंने सभी वेदों की रचना की है.
But in the presence of his guru Maharaj, he's humbled.
और गुरु महाराज के सामने जो है वो विनम्र हो गए थे.
So he replied, "This is in the Bhagavatam."
और श्रीमद् भागवतम में स्वयं इसका वर्णन है. उन्होंने उत्तर दिया.
I'm not sure, Guru Maharaj.
उन्हें कहा गुरु महाराज जो है मैं सही तरीके से नहीं कह सकता.
Maybe it's because I didn't describe Krishna enough.
शायद इसलिए है क्योंकि मैंने कृष्ण का पर्याप्त मात्रा में वर्णन नहीं किया.
Then Narada Muni says, "Yes, that's the problem. You wrote all these volumes of how to do it books. You know, how to build a dam, how to make an airplane, how to build a palace. Everything is there, the Vedas, electricity, it's all mundane, mostly mundane. Nothing about Krishna, that's the point."
और नारद मुनि ने कहा बिल्कुल सही तुमने कृष्ण को छोड़ के सबका वर्णन कर दिया है कि हवाई जहाज कैसे बनाए बिजली कैसे पैदा करे ऐसे सब सबका वर्णन कर दिया है लेकिन जो मूल भगवान है तुमने उसका वर्णन नहीं किया.
Narada ordered him, "You have to write about the glories of the Supreme Personality of Godhead."
तुम्हें अब भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में लिखना.
All these Vedas are mundane, everything you've written, it's a big, a massive encyclopedia, how to do it in encyclopedia. Whatever you want to know is there in the Vedas.
तो तुमने जो है
It's an encyclopedia.
एक वेदा जो encyclopedia में सब how to's के बारे में लिखा है कि क्या चीज कैसे किया जाए वो सब ज्ञान तुमने दिया लेकिन ये सब भौतिक है.
You want to go to the higher planets, what austerities you have to perform.
कैसे ऊंचे लोकों में जाया जाए कैसे स्वर्ग लोक प्राप्त किया जाए.
You want to enter in Brahma Jyoti, what you have to do.
तो ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
But no description of your devotional service, none.
लेकिन तुमने शुद्ध भक्ति का वर्णन कहीं नहीं किया.
So Narada Muni said, "My dear Vyasadev, that's why you're despondent."
नारद मुनि ने कहा इसलिए तुम दुखी हो.
Now write about the glories of the Supreme Lord.
अब तुम भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करो.
Then he composed the Srimad Bhagavatam, you see.
तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा.
And even the Bhagavatam itself, there is no real mention of Krishna until the 10th canto. Think about it. Of course, most of you haven't read. But there's no real mention of Krishna, not much mention of Krishna until the 10th canto. Towards the end of the Bhagavatam, then Krishna comes up. Because it is said that the first canto was the lotus feet of the Lord, and tenth canto was the full-blown lotus face of the Lord.
श्रीमद् भागवतों में भगवान श्री कृष्ण का अधिकांश वर्णन जो है वो दसवें स्कंद में है, क्योंकि पहला स्कंद जो है भगवान के चरणों के समान है और फिर दूसरा उनके जांग के समान है और जो दसवां स्कंद है वो उनका सुंदर मुखारविंद के समान है।
So when you read Shrimad Bhagavatam, you'll find that almost the entire Bhagavatam is about Lord Vishnu, not about Krishna. In fact, almost except the part where, Krishna doesn't come up till 10th canto.
तो भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का जो जो पूर्ण वर्णन
है, incarnations, they come up. Brahman, Shinga, the incarnations come up, but as far as Braja Leela is concerned, not until 10th canto.
तो सब अवतारों का वर्णन है, लेकिन जो ब्रज लीला है, वो दसवें स्कंद में आती।
There we find out about Krishna.
हाँ, हमें कृष्ण का पूर्ण वर्णन मिलता है।
So at least now you know how to answer the question of the programmers.
अब आपको पता है कि डी प्रोग्रामर्स का जो प्रश्न था उसका उत्तर
कैसे देना है। There's a lot more to be said about this era in the history of the United States, but we're out of time.
तो इस कौन के इस इतिहास के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वहाँ पर जब समय समाप्त हो गया।
Of course, the devotees indirectly created the anti-cult movement, unfortunately. I mean, the so-called, the other offbeat religions, they also co-created the anti-cult movement because they were too fanatical. In those days, the devotees were too fanatical. You could take note of this.
तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये deep programmers का जो कि को वास्तव रूप में पैदा करने वालों को पीछे हाथ भी भक्तों का है, क्योंकि उस समय वो बहुत ही fanatical थे या फिर जो है वो।
I've heard that these days the anti-cultists
कट्टरवादी तरीके से व्यवहार करते
हैं। The anti-cultists now admit that the Hare Krishna movement is more mature and more mellow. Then now they admit it.
क्योंकि ना अब जो है जो anti-cult movement वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो अब बहुत ही एक संभाव भावना रखते हैं कौन के प्रति, क्योंकि भक्तों का व्यवहार भी बहुत ही जो है अच्छा हो चुका है।
Foolish devotees just think Krishna consciousness has been bred from your parents. That's why the devotees co-created this demoniac anti-cult movement. They co-created it because they wouldn't call their parents. They would disappear. You know, they wouldn't write letters. Nothing. So that was not proper. They were, you know.
तो इस सब के पीछे हाथ
भक्तों का। Never told them to do that. Never.
इस सब के पीछे हाथ भक्तों का भी है। क्यों? क्योंकि वो जब भक्ति में जुड़ते तो वो घर छोड़ के चले जाते थे, माता पिता से बात नहीं करते थे, उनसे मिलते जुलते नहीं थे। तो इन सब कट्टरवादियों के कारण भी जो है।
In fact, the famous brothers Gargamuni and Brahmananda.
तो जो इस्कॉन में विख्यात दो भाई हैं, ब्रह्मानंद स्वामी और गर्गमुनि स्वामी।
Their mother used to complain. I guess she had audience with Prabhupada.
उनकी माता जो है प्रभुपाद जी से मिली थी और वो अक्सर जो है ये कंप्लेंट
करती
और प्रभुपाद जी को ये दोष देती थी कि आपने मेरे बेटों को ले लिया है, मुझे छीन लिया। वो कोई आसुरिक औरत नहीं थी, वो एक अपने बच्चों से प्रेम करने वाली माँ थी।
ordered Gargamuni and Brahmanana to offer obeisances to their parents, so they did.
तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद महाराज को और गर्गमुनि महाराज को कहा कि वो अपनी माता को दंड प्रणाम करें। उन्होंने किया।
प्रभुपाद never taught us to break from parents. There was concocted by fanatics. प्रभुपाद
ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि हम माता पिता से अपने संबंध को पूर्ण रूप से तोड़ दें।
Stop there. Any questions, comments?
तो किसी को प्रश्न या टिप्पणी है?
Yes. I need a remand man. Come over this way. No, I can't always hear the mic. You know.
How did ISKCON win over those anti-cult people?
How did ISKCON finally succeed? Well, translate that.
Yes, sir.
कैसे जो है इस्कॉन जो है वो सफल हुआ इन एंटी कल्ट लोगों के खिलाफ.
One of the ways was the devotees became more mature. See, they devotees were excessively fanatic.
तो
they were
एक एक बहुत इसका शशक उपाय था कि भक्त लोग जो है वो ज्यादा बुद्धिमान हो गए कैसे व्यवहार करना अपने माता पिताओं के साथ.
They would do often lie to their parents other adharma that the devotees would introduce proper never told us to do like that.
तो जो भक्त लोग अपने माता पिता से झूठ बोलते थे उन्हें झूठ बोलना बंद कर दिया. प्रभुपाद जी ने कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया था.
The neophytes introduced those things.
तो क्योंकि वो नव दीक्षित थे कनिष्ठ थे इसलिए उनको सही तरीके से व्यवहार करना नहीं आता.
Mainly the increased maturity of the devotees, increase of knowledge of the shastra.
और शास्त्रों के ज्ञान को और अच्छे से समझकर और अपने व्यवहार को सुधार कर वो जो है.
Also, there was the library party in those days. Library party were senior devotees, senior men who would go around to all the universities and libraries and sell them sets of Prabhupada's books. So then people were becoming educated and the scholars were giving good reviews on Prabhupada's books. This made a big difference also.
और इसके पीछे और भी बड़ा हाथ ये है कि जैसे जैसे किताबों का वितरण बढ़ते रहा और एक लाइब्रेरी पार्टी थी वो ऐसे भक्तों का वो पार्टी थी जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर प्रभुपाद जी की किताबों का प्रचार करते थे उनको लाइब्रेरी में रखते थे. और जैसे जैसे प्रभुपाद जी किताबें और पढ़ी जा रही थी खासकर जो विद्वान लोगों के द्वारा स्कॉलर्स के द्वारा तो जब उनकी प्रशंसा आ रही थी तो लोगों का विश्वास प्रभुपाद जी उनके आंदोलन पर बढ़ता रहा.
And not all the publicity in the television and newspapers was always bad. It wasn't always bad. Sometimes there would be good publicity in the newspapers and television.
और जो अखबारों में और टेलीविजन में जो इस्कॉन के बारे में जो खबरें आती थी वो हमेशा खराब नहीं होती थी बहुत अच्छी भी होती थी जिससे लोगों का विश्वास और बढ़ते रहा.
Sometimes one time one newspaper wrote Hare Krishna has become a household word.
एक बार एक अखबार ने लिखा हरे कृष्णा जो एक घरेलू नाम हो गया.
When Prabhupada was told that, he was very, very pleased.
जब प्रभुपाद जी ने ये चीज सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुए.
Because he knew the movement was becoming successful. He knew the movement was being successful. If the media says Hare Krishna has become a household word, he took that as an indication that his movement was becoming successful, and it was.
तो प्रभुपाद जी जब पहुंचे तो बहुत खुश हुए क्योंकि उनके आंदोलन जो है अब सफल हो रहा था हरे कृष्णा आंदोलन जो कि वो चाहते थे कि भगवान का नाम हर घर में जाए तो वो चीज हो रही थी. तो प्रभुपाद जी को इससे बहुत प्रसन्नता हो रही थी.
जैसे आपने कहा ना कि बच्चों को कैसे माँ बाप रोक देते हैं भक्ति करने से ऐसे राधा रास बिहारी मंदिर में गिरिराज महाराज जी के साथ हुआ था. यही प्रॉब्लम गिरिराज महाराज जी के सामने आई थी कि उनके माता पिता उसको लेने के लिए आए और प्रभुपाद जी ने कहे थे आपका बेटा है ले जाओ लेकिन वो
है बस. Yeah, there were, you know, sometimes they would do like that. Yes?
The baki bhakt log jo hain wo niji roop se maharaj se prashna aur prashna pooch sakte hain. They'll ask you personally. They'll ask you personally.
He's asking a question.
They'll ask you personally. Other devotees, they'll ask you personally.
They were sufficient numbers of examples of Srila Prabhupada pacifying parents.
हाँ तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं प्रभुपाद जी के कई भक्तों के माता पिता से मिलते हुए और कैसे उनको उन्होंने आश्वासन दिया. बाकी भक्त लोग जो हैं वो महाराज से निजी रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं. रिमेनिंग डिवोटीज विल आस्क यू पर्सनली महाराज. इट्स 9:15. रिमेनिंग डिवोटीज विल आस्क यू पर्सनली दिस क्वेश्चन. दे विल आस्क यू पर्सनली पर्सनली पर्सनली.
या दैट्स ऑलराइट. ओके.
हरे कृष्ण
गुरु श्री बाबा की जय क्रांतिराज जय अमृता की जय नित्य गोप मेलंदे हरे हरे बोल